श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें और आज के वचन को समझने में सहायता करें, हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहेजकेल इसराइल के विनाश की अंतिम भविष्यवाणियों में एक और दृष्टांत को हमें देता है, दो बहनों की कहानी। बड़ी बहन का नाम ओहोलाब था और छोटी बहन का नाम ओहोलीबा था। मेरे विचार में जब वह कहानी सुना रहा था तब वे हंसकर कहते होंगे, यह कहां से ऐसी कहानी उठा लाया है। यहेजकेल 23 उसके एक पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यह उसकी काल्पनिक कहानी नहीं थी, परमेश्वर ने उसे यह संदेश दिया था। यहेजकेल 23 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी, वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुंवारपन में पहले वहीं मींजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। ये दोनों बहनें कुंवारी नहीं थी, वे वेश्या बन गई थी। यहेजकेल कहना क्या चाहता है? यहेजकेल 23:4 में लिखा हुआ है कि उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था, वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामों के अनुसार ओहोला तो शोमरोन और ओहोलीबा यरूशलेम है। यहां पर शोमरोन सामरिया ओहोला था, यह उत्तरी राज इसराइल है और यरूशलेम दक्षिण राज यहूदा ओहोलीबा है। ओहोलीबा का अर्थ है मेरा डेरा भीतर है। दक्षिण राज यहूदा की राजधानी यरूशलेम में सुलेमान निर्मित परमेश्वर का भवन था। उसका नक्शा मिलाप वाले तंबू के सदृश था जो परमेश्वर ने जंगल में मूसा पर प्रकट किया था। यह वह स्थान था जहां मनुष्य परमेश्वर के निकट आता था। यह कैसी अद्भुत बात है। ओहोला का अर्थ है उसका अपना डेरा। यरोबाम ने विद्रोह करके उत्तरी राज्य को अलग कर लिया था और अपनी प्रजा को यरूशलेम जाने से रोकने के लिए बेतेल और सामरिया में एक एक सोने का बछड़ा बनवाकर स्थापित कर दिया था। दक्षिण वासियों के लिए उनके ऊपर मूर्ति पूजा के निमित्त परमेश्वर के दंड की चर्चा करना आसान था। परमेश्वर ने उन्हें इसका दंड भी दिया, परंतु वह दक्षिणी राज्य को भी दंड देगा क्योंकि वे धर्म का स्वांग रच रहे थे। वे सोचते थे कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, परंतु वे पाप में लीन थे। मेरे प्रियो, आज रूढ़िवादी कलीसियाओं और रूढ़िवादी विश्वासियों में जड़ खोदने वाली बात है कि विश्वास के उद्धार पाना। यह सच है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम विश्वास से उद्धार को पाते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उसके लिए न जीऊं। इसका अर्थ यह नहीं कि अनुग्रह से उद्धार पाने वालों को वह दंड नहीं देगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा जीवन कलीसिया के आत्मिक जीवन को हानि नहीं पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, यहेजकेल की कहानी ने ध्यान तो आकर्षित किया है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक किसान के पास एक गधा था। उसने उसे गाड़ी में जोता। उसकी एक रस्सी कपास की थी और दूसरी चमड़े की थी। एक दिन वह अपने एक मित्र को शहर घुमाने ले जा रहा था। वह गाड़ी में बैठ गया। उस किसान ने एक डंडा लिया और आगे जाकर गधे के सिर पर दे मारा। उसके मित्र ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि चलने से पूर्व गधे का ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार यहेजकेल को भी उन कठोर मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कहानी सुनाना आवश्यक था। कभी कभी प्रचारकों को रोमांचकारी विषयों के उपयोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। मुझे उनसे बड़ी सहानुभूति है। आज लोगों का ध्यान आकर्षित करने की अन्य विधि क्या है? यहेजकेल असामान्य विधियां काम में लेता है। हम देखते हैं यहेजकेल 23 अध्याय के 12 पद में, वह अपने अश्शूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सब के सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और सब प्रकार के प्रधान थे। यह राजा आहाज के राज्यकाल की एक ऐतिहासिक घटना है। दक्षिण राज्य में वह अश्शूरों के राजा तिग्लिस-प्लेसर से भेंट करने दमिश्क गया था। उसने वहां एक वेदी देखी जो उसकी समझ में सबसे सुंदर वेदी थी। अतः उसने उसका नक्शा उरियाह याजक के पास भेज दिया। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 10 से 18 पद में देखते हैं कि वह ठीक ज्यों का त्यों एक वेदी बनवाए। वह आराधना में सुधार लाना चाहता था, अतः उसने वह वेदी बनवाई। परमेश्वर ने यह देखा और उत्तरी राज्य को दंड दिया। मेरे प्रियो, अब दक्षिणी राज्य पर बेबीलोन की सेना का आक्रमण होने वाला है। इसका विकल्प नहीं है। परमेश्वर उत्तरी और दक्षिणी राज्य दोनों राज्यों को दंड दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का त्याग किया है। एक निर्लज्जता से मूर्ति पूजा में लग गया, तो दूसरा ऊपरी दिखावे में प्रभु भक्ति में लीन था। मेरे प्रियो, विश्वासियों के लिए पौलुस की चेतावनी पर आप ध्यान दीजिए और ध्यान देना उचित ही होगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अब आप कहेंगे, क्या आप विश्वासी की सुरक्षा में विश्वास नहीं करते? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं पाखंडी विश्वासियों की असुरक्षा में भी विश्वास करता हूँ। हमें स्वयं को देखना है। आप आराधना में क्या वास्तव में परमेश्वर की उपासना करते हैं? क्या आप मसीह के पास आते हैं? क्या आप वास्तव में उससे प्रेम करते हैं? उसे आपकी उपासना की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि आप स्वयं परमेश्वर से प्रेम ना करें, एक दूसरे से प्रेम ना करें। यूहन्ना अध्याय 21 में उसने शमौन पत्रस से पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पत्रस ने कहा, हाँ। तो प्रभु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रेम के बाद ही प्रभु ने उसे काम में लिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 24 से जारी रखेंगे, जिसका शीर्षक है खौलता हुआ हंडा। अध्याय 24 में खौलते हुए हंडे का दृष्टांत है और यहेजकेल की पत्नी की भी मृत्यु का उल्लेख है। परमेश्वर इन दोनों घटनाओं के द्वारा प्रजा से बात करेगा। यहेजकेल 24 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। यहां पहली बार यहेजकेल अपने संदेश का समय बताता है। इस समय नबूकदनेस्सर यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ रहा था। उस समय टीवी तो नहीं थे कि यहेजकेल को युद्ध का आंखों देखा हाल पता चले। यरूशलेम का समाचार बेबीलोन पहुंचाने के लिए उपग्रह सेवा तो थी नहीं, जी हां, वह केवल परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा ही संदेश प्राप्त करता था। एक मुक्त विचारक टीकाकार ने कहा, यह पद हमें द्विधा में डाल देती है कि यहेजकेल या तो मनगढ़ंत झूठ बोलता था या उसमें अंतर्दृष्टि थी। मेरे प्रियो, निश्चय ही उसमें अंतर्दृष्टि थी, परमेश्वर की दृष्टि थी, परंतु मुक्त विचारक इसे ऐसा नहीं मानेगा। यहेजकेल 24 के 6 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उस हत्यारी नगर पर, हाय उस हंडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं, उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी ना डाली जाए। यहां फिर यरूशलेम को हत्यारा नगर कहा गया है। एक हंडा है और उसमें तलछट है। वह हंडा यरूशलेम है जिसमें वहां के नागरिक हैं, उनके पाप का प्रतीक वह तलछट है। मेरे मित्रों, कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी को धरती का बोझ कहा जाता है। आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि आपके और मेरे पाप धरती का बोझ है। ध्यान से सुने, हम सब एक ही हंडे में हैं। यरूशलेम रूपी हंडा आज आपके और मेरे लिए संसार रूपी हंडा है। जातिवाद से मैं अब ऊब चुका हूं। हम सब एक ही हंडे में हैं और हमारा पाप है धरती का बोझ। इससे अधिक कठोरता से और क्या कहा जाए? यहेजकेल 24 उसके 15 और 16 पद में लिखा है, यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना। ध्यान दीजिए कि यहेजकेल की पत्नी सुंदर थी और वे आपस में बहुत प्रेम रखते थे, परंतु बंधुआई में वह बीमार होकर मर गई। यहेजकेल का दुख अपार था, परंतु उसे अभिनय करना था। यहेजकेल 24 के 17 में लिखा है, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूते पहने रहना, और ना तो अपने होंठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। परमेश्वर ने उससे कहा विलाप नहीं करना, परंतु वे नहीं समझ पाए कि वह क्यों विलाप नहीं कर रहा था। उन्होंने यहेजकेल से पूछा कि वह विलाप नहीं कर रहा है क्यों? ऐसा भी कोई पुरुष है जो पत्नी की मृत्यु पर विलाप ना करे? यहेजकेल यह सब इसलिए कर रहा था कि प्रजा को परमेश्वर का संदेश मिले। पद 24 इस संपूर्ण पुस्तक की कुंजी है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 24 का 24 पद। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। उस समय यरूशलेम का विनाश हो रहा था और शीघ्र ही बेबीलोन संदेश पहुंचा। 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। यहेजकेल 33 अध्याय के 21 पद में आप इसे पढ़ सकते हैं। उनके शिविर में ये भगोड़े आए, वे बुरी दशा में थे। वे कहने लगे, हम यरूशलेम से भागकर आए हैं। ये झूठे भविष्यद्वक्ता गलत थे। जी हाँ, वह नगर जलाकर नष्ट कर दिया गया है। मंदिर मलवे का ढेर हो गया है। पूरा शहर मलवा और राख हो गया है। यहेजकेल विलाप न करके ठीक ही करता था। विलाप न करने का कारण पद 27 में दिया गया है। यहेजकेल 24 के 27 में लिखा है, उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लिखा है, और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यरूशलेम परमेश्वर का नगर था और मंदिर उसका भवन था। वे संसार में परमेश्वर के गवाह थे, परंतु वे चूक गए, अपने कर्तव्य से, कर्म से चूक गए। परमेश्वर कहता है, मैं पृथ्वी पर से मेरे गवाह भी हटा दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो यरूशलेम उजड़ चुका है, तुम्हारी श्रेष्ठ प्रजा भी बंधुआई में लाई जा रही है, परंतु रोने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने चित्कार मारने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने यह किया है, मैं उसका उत्तरदायी हूं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सातों में से प्रत्येक कलीसिया से कहता है, संसार में अपने गवाही के प्रति सावधान, या फिर मैं आकर तुम्हारे दीपदान हटा दूं। उन सातों कलीसियाओं के दीपदान हटा दिए गए थे, आज उनमें से एक भी कलीसिया नहीं है। यदि आप विश्वासी होकर परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो वह आपका दीपदान हटा देगा और आपकी ज्योति नहीं चमकेगी। यह एक कठोर बात था, आज के मीठे मीठे बोल वाला संदेश नहीं था। यहेजकेल परमेश्वर की ओर से बोलता था और बार बार कहता था, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यदि आप इससे विवाद करना चाहते हैं तो परमेश्वर से बात करें, परंतु याद रखें, परमेश्वर सही है और हम ही जो सदा गलत हैं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 25 में आते हैं, परंतु हम इसमें सिर्फ इसके परिचय को ही देखेंगे। मेरे मित्रों, अन्य जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी अमोनियों, मुआबियों, एदोम वासियों और पलिस्तियों के विरुद्ध में। अब एक नया भाग यहाँ पर आरंभ होता है, अध्याय 25 से 32। इसमें इसराइल के पड़ोसी राष्ट्रों के विरुद्ध भविष्यवाणियां हैं। ये सब जातियां आज पृथ्वी पर से विलोप हो गई हैं। उनके विषय की गई प्रत्येक भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई है। अब तक यहेजकेल यरूशलेम और संपूर्ण देश के लिए भविष्यवाणी सुना रहा था, क्योंकि इसराइल की संतान की अंतिम बंधुआई पूरी नहीं हुई थी। प्रजा झूठे भविष्यवक्ताओं की झूठी प्रेरणा और प्रोत्साहन के कारण अंत समय तक आशा का दुर्बल धागा पकड़े हुए थी। उन्हें झूठा ढाढ़स बंधाया जा रहा था कि परमेश्वर यरूशलेम और इसराइल देश को नष्ट नहीं होने देगा। क्या यह संसार से संपर्क करने की परमेश्वर की विधि नहीं थी? यरूशलेम के उजड़ने का समाचार सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। वे अवाक थे कि क्या ऐसा होगा। मेरे प्रियो, यहेजकेल की भविष्यवाणी सच निकली। अब वह यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी नहीं देगा। वह इतिहास नहीं, भविष्यवाणी लिख रहा था। अब वह पड़ोसी राष्ट्रों का भविष्य को सुनाता है। जी हाँ, इस अध्याय में हमारे लिए एक महान शिक्षा है। परमेश्वर का नगर उजाड़ पड़ा है। मैं उस नगर में एक मनुष्य को खड़ा देखता हूं, उसका नाम यिर्मयाह है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसका दिल दुख से भरा हुआ है। वह लगभग 500 वर्ष बाद आने वाले एक मनुष्य का चित्रण है। वह भी जैतून के पर्वत पर बैठकर यरूशलेम के दूसरे विनाश के लिए रोएगा, क्योंकि उन्होंने फिर जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया है। एक और भविष्यद्वक्ता है जो रोता नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी समय उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और धर्मशास्त्र से स्पष्ट है कि वह उससे बहुत प्रेम करता था। यह यहेजकेल है जिसे परमेश्वर का आदेश है कि वह विलाप ना करे। बाहर से तो वह कठोर प्रतीत होता है, परंतु अंदर से वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है। यर्मिया और यहेजकेल परमेश्वर के दो पक्ष प्रकट करते हैं। आज हमें यही देखना है कि परमेश्वर का हृदय अति कोमल है। यर्मिया के समान प्रभु यीशु दयालु और कृपालु है। वह नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो। वह नहीं चाहता कि आप नाश हो, पाप में मरे। इस कारण वह हमारे लिए क्रूस पर मर गया था। परंतु उसका त्याग करने वाले नगर के लिए उसके वचन को सुने। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, उन नगरों के लिए, हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा के नगर में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। यह नम्र यीशु की कठोर भाषा है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 44 पद में भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया था। हे फरिसियों, तुम पर हाय, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। प्रभु यीशु ने उन्हें ऐसी झिड़की दी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। परमेश्वर के दो पक्ष यहाँ प्रकट हैं और वह आज भी ऐसा ही है। हम यह सुन सुन कर कि परमेश्वर प्रेम है, उसके विषय एक भिन्नता या मानसिकता विकसित कर चुके हैं। यह सच ही है कि परमेश्वर प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आप यह ना भूलें कि परमेश्वर पवित्र है, वह धर्मी है और निश्चय ही दंड देगा, क्योंकि वह न्यायी है। आप इस प्रेम की नया में स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए आपको प्रभु यीशु में अपना विश्वास दृढ़ करना होगा। उसने आपके लिए अपना लहू कलवरी क्रूस पर बहाया और क्रूस की मृत्यु सहली। इसके द्वारा ही आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा और मसीह यीशु की धार्मिकता पहनाई जाएगी और आप उसमें पूर्ण एवं ग्रहण योग्य ठहरेंगे। यदि आप उसके उद्धार को अस्वीकार करेंगे तो दंड की अपेक्षा और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में प्रभु यीशु के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। मेरे प्रियो, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा है, क्योंकि वही आपके पापों के लिए मरा है, सारे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ है, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम बच जाएं। इसलिए आज मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, लाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस पर विश्वास करना है और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है और अपने पापों को छोड़ उसके पद चिन्हों पर चलना है। परमेश्वर के प्रति हमारी जो विकृत मानसिकता है, उसके संबंध में मुझे एक न्यायाधीश का स्मरण आता है। वह तुरंत निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, आप तुरंत निर्णय लेते हैं, इसका राज्य क्या है? उसने कहा, मैं बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं प्रतिवादी की बात सुनकर निर्णय ले लेता हूं। उसका मित्र यह सुनकर चकित हुआ और उससे पूछा, क्या आप अभियोग पक्ष की बात नहीं सुनते हैं? उस न्यायाधीश ने कहा, पहले तो मैं सुनता था, परंतु उससे उलझन ही उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार अनेक लोग उलझन में पड़े परमेश्वर को केवल प्रेम समझते हैं, परंतु हम यह न भूलें कि वह दंड भी देता है। शायद यही कारण है कि यहेजकेल की पुस्तक अनेकों के लिए एक बंद पुस्तक है। मुक्त विचारक पादरी कहते हैं, यहेजकेल की पुस्तक को मैं समझ नहीं सकता। उनका कहना उचित ही है, क्योंकि यदि आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। यहाँ हमारे लिए एक असाधारण शिक्षा है जिनसे हमें चूकना नहीं चाहिए। जी हाँ, हमें इन शिक्षाओं को बहुत गंभीरता से लेना है ताकि हम परमेश्वर की उन सत्यताओं को समझ सकें। आज हम में से कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं परंतु परमेश्वर के वचन की सत्यता को जानना नहीं चाहते हैं। वे सुनकर ही विश्वास करना चाहते हैं। जो कोई कुछ भी कहे आप उसे मान लेते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम वचन की सत्यता को जानने के लिए स्वयं से पढ़ें और निश्चय जाने कि आप परमेश्वर के प्रेम को पहचान पाएंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप अवश्य ही प्रभु यीशु के पास आएंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महा, हे प्रभु यीशु महा। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर।